কথা শ্রীমৎ ভাগবতম গীতা প্রভুপদ পাস্ট টাইম উই আর ডিসকাসিং এভরি সানডে অল দ্য টেম্পলস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বিকজ প্রভুপদ স্টার্টেড দিস থিং দ্যাট ইজ কল সানডে ফিস্ট অ্যাকচুয়ালি উই আর ভেরি ফর্চুনেট ইন আওয়ার লাইফ টাইম অ্যাট লিস্ট দেয়ার ইজ এ অর্গানাইজেশন where you can get peace in your mind and you can get the lesson from Bhagavad Gita as well as from Srimad Bhagavatam. And particularly Prabhupada wanted this thing. When I met Srila Prabhupada in Calcutta, it was in 1970, August. Srila Prabhupada first arrived in Calcutta in the year 1970, in the month of August, and the date was 30th August, the Sunday. The first he came to Calcutta with some 6 Western disciples. And there was a press conference regarding this, that arrival of Srila Prabhupada in Calcutta. So all the press people, I was that time a student, I'm going to Calcutta University that time, college student, so I also was there. So all the press people was there, and Prabhupada spoke them in Bengali because the press reporter, they are all from Calcutta and they are covering the why Prabhupada, Srila Prabhupada brought these all Western devotees in Calcutta. The Prabhupada is given a simple answer. The sarva dharmang parityajya mam ekam sharanam bhaja aham tum sarva papebhyo mukshayishami mahasucha. Srila Prabhupada told all the reporters, you see, they are all from Christian family and they left everything. Why? In the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And you, the people, are Calcutta people, you are doing so much politics, so many dirty thing, and this religion, that religion, but they were Christian. They have left everything. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam bhaja. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. So Krishna is saying, so you are very fortunate. You are Srila Prabhupada's movement, and you are helping our preaching movement. You are all grihastha people, you are busy men, but you have saved some times for Krishna, for service, exalted personality, Srila Prabhupada. So, in that way, you are very fortunate. You know, then all the journalists, they are laughing, they are very happy. And Prabhupada, particularly in the beginning, he brought from USA only the Bhagavad Gita as it is, and Krishna book, and some Back to Godhead. That time, Srimad Bhagavatam was not published, and Chaitanya Charitam. It is in process, but in the beginning, when he arrived in Calcutta in 1970, he brought only a few books. And he gave all the journalists. So they are astonished. One gentleman from Calcutta, his book published from Macmillan Company, the world's the best publisher, Bhagavad Gita as it is. They are astonished. So Srila Prabhupada, though he was born in our family as a Bengali, but his English was so perfect and so, I think that in my lifetime I have never seen such type of when he is calling Tamal Krishna, please come, take dictation. Every day he used to give 30 letters dictation to Tamal Krishna. He was a private secretary that time in Calcutta. He is taking there. There was that time, nowadays so many modern equipments here, so no problem. So immediately in computer, within 5 minutes, you can do everything. But that time, I did not see the computer. The Remington typewriter is small. So he is typing and taking to Srila Prabhupada, this is the letter. So Prabhupada says, yes, some grammatical mistake is there. You are foreigner, but you do not know. This is your language. This is not my language. Yeah, it is true. Maybe, so Prabhupada was expert in all respects. That is, he is Saktavesh Avatar. He came from Krishna. Though we are in his family, we could not recognize only those who are very fortunate. That's why Chaitanya Mahaprabhu says, when Chaitanya Mahaprabhu and Prakashananda Saraswati were in Kashi, in Prayag, they are discussing, because Prakashananda Saraswati was Mayavadi and he was a very highly scholar at that time. He knows all the Vedas, all the scriptures, everything he knows. And Chaitanya Mahaprabhu was there arguing. However, lastly, the Prakashananda Saraswati, he admit. What he admit? It is stated in Chaitanya Chaitamrita in Bengali. Jakichu kohile tumi shob shotto hoy. Krishna bhakti shei pay jar bhaggodoy. Dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, whatever you have said, all that is true. One who is favored by fortune attains Krishna bhakti. Not everyone. So you are very fortunate. You all of you, I am very happy to see that with devotional mind, you are here serving Radha Gopinath and following the instruction of my beloved Godfather Srimad Radhanath Swami Maharaj, by whose inspiration you are here, and all of his jewel son, I mean disciples, they are all highly educated. They, in material world, they are highly accepted. But they are all qualified. Doctors, engineer, M.Tech, V.Tech. I had a good chance to see, just last week I delivered lecture in NBCC. So there are so many young boys, they are all highly educated. Why they left? Raghunath Das Goswami, Sanatan Goswami, Rup Goswami, Srijiv Goswami, they are all highly intellectual and they are all highly educated. They are all rich men, sir. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, they left everything. So similarly, seeing Maharaj, extraordinary preaching, endeavor, sacrifice, dedication, devotion to Srila Prabhupada, and loving heart. Jo ap guru mila hai, asli guru. Kali yug mein bahut problem hai. The age of Kali, it is very difficult to get a bona fide spiritual master. You can get everything. You have big building, you have big business, you have big, I mean, topmost qualification, but you will not get a bona fide spiritual master. So in that way, what Mahaprabhu, I mean, that day was discussion with Prakashananda Saraswati, that those who are very fortunate, they can avail, they can get the Krishna bhakti. It is not an easy thing, but fortune is there. So I am very happy that all of you are very interested, coming every day temple. I am here only for my own interest. Whenever I am sick, I am coming to Bhaktivedanta Hospital. I do not know any address. Though I am running a charitable medical center in there, where the doctors are coming from Calcutta. But I have firm faith, because I have never seen such type of atmosphere in any hospital in India, I can say, where 24 hours Prabhupada's lecture and song and class is going on, and all the doctors and staffs, nurses, reciting Shikha Stakam. How nice they have created. Many thanks to Madhavananda Prabhu, Vishwarup Prabhu, Santosh Chaudhuri, and there are other doctors, Dr. Dalal. They have a team. So they are really, why? Because by the endeavor, by the pure heart, pure guru, Radhanath Maharaj, he changed everything. Because by profession, Prabhupada was a chemist. He was a medical man. When he met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in 1922 in Calcutta, then first meeting with Bhakti Siddhanta Saraswati, he advised, just you are a young man, highly educated, coming from a very rich family, Vaishnava family. Now it is your duty to preach this divine message in Western world. So Prabhupada was married, 3 sons, 2 daughters, wife. So everything he left, and in 1950 went to Vrindavan. Why? Only for you. To rescue all these fallen souls. And from 50 to 65, he was there. He was writing all the books. You are reading, is it not? Or Srila Prabhupada books. If I ask you why you are joined this movement, you will tell me that only by reading Srila Prabhupada books. Why? There are so many Gitas. There are so many organizations. Gaudiya Math, Ramakrishna Mission, Bharat Sevashram Sangha, and Dr. Radhakishan Gita, Dr. Jagadish Chandra Bose Gita, so many Gitas in the market. But none of them wrote perfectly. They are all sometimes concocted, their own idea, own philosophy. But Prabhupada wrote Bhagavad Gita as it is, without deviation. Whatever Krishna says to Arjuna, he wrote. That's why Prabhupada's book is jewel. It is when somebody is very sick or somebody has got any problem, bodily problem, mental problem, or family problem, take Prabhupada's books. That is the only way that give you peace in your mind. Only medicine. And that physician, all those who are serving, not working, serving in devotion in Bhaktivedanta Hospital. So I am highly obliged to them. They are doing a miracle job in that hospital. Whenever I am going, I see so many Muslim people comes. They are getting darshan of Jagannath, prasadam. All the doctors there distributing prasad, tilak, kunti. Oh my God, the forecast, Bhaktivinoda Thakur, when that day will come, when the, all the foreigners, they will come and say, Jai Gaurangon, Jai Nitai, and they are wearing the Kunti and Tilak. And same thing happening in Bombay. All the educated boys from college, school, high court, judges, big physician, big engineer, they are under the banner of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, in this way, Srila Prabhupada wrote this book, and he gave this book to everyone. So why, you know, this book is so joyous, so nice, so beautiful, so wonderful. You know what is the reason behind it? Because that book is written at Radha Damodar Temple, where Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they used to do their bhajan. So Prabhupada all the time begging that without mercy of Rupa Raghunath, I cannot write this thing. Give me mercy. Give me mercy. He's crying sometimes in Vrindavan. So that's why Prabhupada's books is, the best book in the world. There are so many Gitas. So however, so Prabhupada distribute that Gita, all the journalists in Calcutta, and they are very happy, they are highly pleased. So Srila Prabhupada came 1970, and in my childhood, I had seen Srila Prabhupada in our house, in our village called Taliganj. He used to visit our house several times before going to America in 1965. At that time, he was a householder. He was born in 1896 in our village. In terms of family relationship, he's my grand uncle. And I have been very fortunate to attend this, you know, Sunday feast here. So in that way, Srila Prabhupada, who is a transcendental saint, a Saktavesha avatar of the Lord Sri Krishna, who has delivered thousands of fallen souls all over the world through his book Gita. In 1971, he instructed Jayapataka Swami, Achyudananda Swami, and myself to distribute Back to Godhead magazine and Bhagavad Gita in office square, in office, different office, schools and colleges. Daily after morning prasadam, 9 o'clock, 3 of us would distribute books all over Calcutta with the help of these two foreigners. In 1973, he ordered me to distribute all my books in the libraries in Calcutta, in West Bengal. There are 700 libraries in West Bengal where I had a good chance. Not all personally I visited. I sent someone distribute Srila Prabhupada books, and Prabhupada was very happy. On 30th October 1973, he sent me a letter from ISKCON Jew as following, the Shankarshan Prabhu, Shankarshan Das, I am very glad to know that you are helping in the preaching mission work by distributing our books in the libraries in Calcutta and in West Bengal. This is a very important work. The more our books are distributed, the more people will become convinced about this Krishna consciousness movement, and they will be benefited from it. So if you are a nice boy, and I wish that your you will continue this service in this way. Your ever will be, sir, as he Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. So, in that way, I am still trying to serve Srila Prabhupada, and you know that then Srila Prabhupada instructed me to introduce our temple at 3C Albert Road among the Bengali people and Marwari people. So every Sunday we are same thing, you know, we are holding a feast and class one week in Bengali lecture. So when the Bengali lecture is coming, I am delivering Bengali lectures because by birth I am a Bengali. When the Hindi lecture is coming, so some Hindi people are there. Now, just 3 years, by the mercy of Radhanath Maharaj, he is taking care for our Calcutta temple, and Acharya Ratna Prabhu, you know, all of you, is a very nice brahmachari and highly educated. So he also, system is the Sunday is English class, sometimes Hindi and sometimes Bengali. So this is Prabhupada's desire, that he has started Sunday feast, Sunday lecture, and whatever we could arrange for you, some prasadam, you honor prasadam. So in that way, still the tradition is going on by his disciples and grand disciples. So lastly, I will say something. This is one letter I got from Srila Prabhupada on 4th May 1977, the last year Srila Prabhupada was in Vrindavan. He called all his disciples, all the foreign disciples were there. Even Radhanath Maharaj was there. He wrote me a Bengali letter from Juhu Temple. In the letter, Srila Prabhupada expressed his last desire that his memorial may be built at his birthplace at Taliganj in Calcutta, where he was born. Because all his disciples, they are very eager to know where Srila Prabhupada was born. Like, why we are going to visit Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, Mayapur? Because Mahaprabhu was born in a tiles house, a small house, under the banner, under the Nimgas tree, Nim leaf tree. So Srila Prabhupada was born, same, you know, in Calcutta, where he was born. That was completely 125 years ago, absolutely village. In a mud house, a small tiles house, Srila Prabhupada was born. So, that place we got, and also our house, Srila Prabhupada's Mausi Bari hai, Amara jo bari hai, wo Prabhupada ji ka Mausi Bari hota hai. Srila Prabhupada's mother's elder sister house, where Prabhupada's grain ceremony was held, and where actual place we got, that was, we can say, previously 100 years back. So, kya hai, dai aata hai, aur naval card deta hai, thoda jhubri mein lirka lok hota hai. Abhi the sophisticated hospital mein wo seizure hota hai, us time seizure nahi hota hai, wo naval, they are cutting naval, a small house, very small, where people cannot see the delivery. So when Rajani Devi, Prabhupada's mother, was pregnant, so she came to our elder sister house. Her elder sister was name was Lokimoni. Lokimoni and Rajani, two sisters. So Lokimoni immediately went to deliver the son. So on the auspicious day, just after Krishna's birthday, that Nanda Utsav, Srila Prabhupada was born. So we are very fortunate that Prabhupada was born in our village, and Prabhupada has instructed me that it is a matter, a great pleasure. Prabhupada wanted that some memorial should be built in his birthplace. So I am very happy. Just 1 year back, His Holiness Radha Nath Maharaj gave some money to Calcutta Temple for more than 10 lakhs rupees. And another devotee, he's a very nice devotee who is working very hard. His name is Radha Jivan Prabhu. He is also gave 10 lakhs rupees to Calcutta Temple to acquire the Srila Prabhupada birthplace, original, where the child was delivered. So by the mercy of Krishna and Srila Prabhupada, very small place, only 2 kattas of land, not even small. So we got the land, and we are planning to make a memorial under the direction of Radhanath Maharaj near future. So in that way you can enjoy something when you will go to Calcutta. So let me, because now there is another speaker is there, he's waiting, and my wife Sachimata Devi Dasi, she is sick. So thank you very much all the doctors in Bhaktivedanta, I mean hospital, they operated my wife's eye and she is now alright. And so let me speak, I am requesting her to speak something about Prabhupada pastime. She knows so many pastimes because her first initiation in Mayapur, second initiation at Radha Damodar Temple. So that time ISKCON was not in Vrindavan. So she has a lot of experience. So you can release and enjoy something. Thank you very much.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschato Deshatarine. Actually, my knowledge is not such broad. I cannot speak and explain everything in English. So let me allow, please allow me to speak in Hindi. Even my Hindi may not be correct. फिर भी आप लोग वैष्णव है, आप लोग को चरण जुगल माता जी प्रभु जी सबका चरण में वंदना करके मैं जो थोड़ी सी जानती हूँ प्रभुपाद के बारे में बोलना मेरा दृष्टता है, क्योंकि प्रभुपाद जो थे आप लोग तो जानते ही हैं कि उनको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो दिव्य एक भगवान ने उनको भेजा है कि हम लोग को इस मेटेरियल वर्ल्ड से मतलब रक्षा पाने के लिए. तो मैं 16 साल की उम्र में उनको मिले थे, जब छोटी थी, मेरे को शास्त्र ज्ञान तो कुछ नहीं था उस टाइम. मेरे साउथ एरिया में प्रभुपाद आए थे, तो उस टाइम हम कंजर्वेटिव घर की लड़की है ना, वो उस टाइम सभी लड़की लोग आज से 50 साल पहले इतना फॉरवर्ड नहीं थे, सब लड़की लोग ही तो अपने घर पर थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव ही थे. तो जो भी हो, मेरे को उस समय घर से नहीं उनसे मिलने दिया गया, किंतु मैं चाहते थे कि उनसे थोड़ा मिले, क्योंकि मेरे ही मोहल्ले में वो आए थे. तो फिर मैंने स्कूल दूसरी साल स्कूल से आते समय उनसे एक देखिए बहुत बड़ा पैंडल प्रोग्राम आया मेरे स्कूल के रास्ते में, तो ऐसे ही हम लोग लड़के लोग उसमें घुसे क्या है देखने के लिए, थोड़ा इनक्विजिटिवनेस थी, तो देखा कि उधर में सब वही पुराने डिवोटी लोग हैं जो मतलब अगले साल ने मैंने मिली थी रास्ते पे कीर्तन करते हुए, जयप्रदा का महाराज थे, अच्युतानंद स्वामी थे, तो उन दोनों को हम पहचान लिए। तो फिर पूछे कि क्या है इधर, बोले गुरु महाराज आए हैं, शाम को लेक्चर है। हम तब सोचे मन ही मन, हम थोड़ा तय कर लिए कि हम जरूर आएंगे अब शाम को घर में बिना बोल के। फिर हम हाँ घर में फिर नहीं बोला कुछ, ऐसी माँ ने पूछी थी कि कहाँ जा रही हो, तो हम बोले कि ऐसे आ रही है सैली के घर से, ऐसे बोल के चल के आ गए। थोड़ी सी दूर में ही मैदान था वो मेरे घर से, पैदल से चल के आ गए। फिर प्रभुपाद ने बंगाली में डिस्कोर्स दे रहे थे भगवत गीता के ऊपर, तो उन्होंने उस समय भगवत गीता क्या होता है उतना पता नहीं था मेरे को, ऐसे ही घर में पिताजी लोग थोड़ा बहुत बात करते थे, तो जाते भगवत गीता हमारा धर्मीय शास्त्र ग्रंथ है ये सब मालूम था, मतलब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब नहीं मालूम था। तो श्रील प्रभुपाद ने बताते थे कि भगवान को प्यार करो इतना, जैसे तुम भगवान को एकदम एक साइड में रख दिया और अपने परिवार से इतना प्रेम करता है तो तुम भूल गया, किंतु तुम ऐसे प्यार करो तो तुमको भगवान ने तुमको उल्टा वापस बहुत प्यार देगा। मैंने ये छोटा सा मैं लड़की, हम तो भगवान को कभी देखे नहीं, ऐसे घर में पूजा होता है तो हमारी बुआ जी भी बहुत कृष्ण भक्त है, तो गोपाल जी का, तो मेरे को मालूम था कि कृष्ण ही भगवान होता है ऐसे, ये इतना मालूम था। तो फिर ना बोला कि भगवान, तो हम बोला कि वाह इतना इतना सीधी रास्ता से इन्होंने बता रहे हैं कि एक फूल चढ़ाओ प्यार से, रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाओ और पानी दो, भगवान खुश हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो मैंने बहुत, मेरे को हृदय में ये बात बहुत अच्छा लगा, बोला कि इतना जल्दी से भगवान से मुलाकात होगा, यही धारणा 16 साल की उम्र में मेरे हृदय में उन्होंने दी है। फिर है ना हम सोचे कि इतने अच्छे बात तो किसी ने कभी, मैं इतनी साल की उम्र में कोई नहीं सुनाया मेरे को, ऐसे सोच रहे थे मन ही मन। फिर देखा कि अरे हमारे सामने गाड़ी में वो चढ़ रहा है, सामने ही उनका गाड़ी था, और इस समय इस्कॉन का जितना आप देखते हैं ना इतना तो नहीं था ना, फ्लावरिश नहीं था इस्कॉन। प्रभुपाद का लिए बजोड़िया साहब ने बाद में मुझे मालूम हुआ कि एक तो बजोड़िया कोई हमारे वेल विशर था कलकत्ता में, उन्होंने एक पुराना गाड़ी दिया था, वही गाड़ी सालों से रखा गया था 77 तक, जब तक प्रभुपाद आते थे तो वही गाड़ी में आते थे, उनको लेके आते थे रिसीव करके एयरपोर्ट से। एनीवे वो एक पुराना प्लाईमाउथ गाड़ी था, तो वही गाड़ी खोल के उन्होंने, एक डिवोटी ने दरवाजा खोला, तो हम बोला कि अरे महात्मा है इसको प्रणाम करना चाहिए, तो मैंने प्रणाम किए, तो फिर उन्होंने रुक गए। फिर बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो बंगाली में पूछा, मैंने बताया। फिर बोला ठीक है कल 11 बजे आना तो तुमसे बात करूंगी। हम बोला चलो और कुछ भी सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए जरूर मिलेगा मेरे को। तो फिर किंतु घर में नहीं बोलने पाया, फिर कभी 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 सोचता है कि जाऊंगी, फिर सोचता है नहीं जाऊंगी, बाप रे यदि इन लोग हिप्पी होंगे तो हमको पकड़ के रख देंगे, हाँ तो फिर हमको मम्मी नहीं मिलेगी, ऐसे ही हम इकलौती बेटी है घर में। फिर है ना ऐसे करते करते हम एक बार सोचता है जाऊंगी, एक बार सोचता है नहीं जाऊंगी, ऐसे करते करते 11 तो चला ही गया, 11:30 हो गया। तो फिर मेरे मोहल्ला में एक मेरा भैया वो मतलब कजिन ब्रदर का एक दोस्त था, उसका चांदी का दुकान था, हम जाके बोला कि 20 पैसा दो ना, तो बोलते कि क्या करोगी, हम बोला कि ऐसे ही जरूरी है बस में कहीं जाऊंगे आके दे देंगे तुमको, कहीं जाएगी तू, हम बोला कि ऐसे ही हमको कुछ काम है ना, दोस्त स्कूल्स के लड़की से परीक्षा के लिए बुक मांगना, ऐसे झूठ बोल दिए नहीं तो तुरंत घर में खबर कर देगा। तो फिर है ना फिर इतना सालों का बात, ये हमको बहुत आज लगता है कि कल की बात है, ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है प्रभुपाद से। तो फिर जब गए एसी 3C अल्बर्ट रोड में जब पहुंचे हैं ऐसे पूछ पूछ के, और बस में भी दो चार डिवोटी थे क्योंकि उन लोग भी वो मैदान से घर उधर ही जा रहे थे अपने आश्रम पे। दीनानाथ प्रभु थे, वो अभी नहीं है हमारे सोसाइटी में नहीं है, दीनानाथ प्रभु थे उस टाइम, बहुत पुराना, बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे वो, साउथ अमेरिकन थे। एनीवे वो जब है ना वो हमको बोले चलो आपको हम दिखा देते हैं। फिर हम गए तो श्याम सुंदर प्रभु थे प्रभुपाद का सेक्रेटरी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं होगा, शाम को हो। बोला शाम को तो कभी नहीं आ पाएंगे, आप थोड़ा जाके बोलिए ना थोड़ा, अगर उन्होंने मेरे को अलाउ कर दे तो। फिर बोला ठीक है, तो फिर जाके वो बोला तो प्रभुपाद हमको ऑर्डर दिए जाने के लिए उनके पास, तो एक गमछा पहन के उन्होंने, प्रभुपाद बहुत सिंपल थे, प्रभुपाद तो क्या थे मैं नहीं वर्णन कर पाऊंगी। तो वो तेल मालिश कर रहे थे श्रुत कीर्ति प्रभु, बोला कि तुम तो एकदम पंचुअल ही नहीं ली है, कैसी लड़की है, 11 बजे बोला, अभी तो 12:30 हो गया, अब तुमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, और इतना देरी से आए, तो अभी हमारा खाने का टाइम है, फिर उसके बाद हमारा रेस्ट करने का टाइम है, बहुत डायरेक्ट बोलते थे वो। तो फिर हम बोला चुपचाप खड़े हो गए, क्या बोलेंगे, वो मेरा दादाजी जैसे उम्र के थे। फिर है ना हम चुपचाप खड़े हो गए, तो बोला ठीक है शाम को कल से आना हाँ, और तुम्हारा घर में, और वो अंदर के बात भी शायद समझ लेते थे, पापा को भी साथ में ले आना। ठीक है, तब तो हम बोले कि चलो खुले हम तो परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बंगाली है, मेरे पापा तो तब इतना गलत नहीं सोचेंगे। फिर हम जाके शाम को पापा को, थोड़ा प्यारी थी हम, इकलौती लड़की थी, पापा ऐसे पिताजी हमको थोड़ा एक महात्मा से दर्शन हुआ, महात्मा कौन सा महात्मा, कैसे महात्मा, हम बोला चलो ना कल आपको जाने बोला है। तो फिर पिताजी आए प्रभुपाद से बातचीत किए, तो कृष्ण जी का क्या कृपा है कि फिर मेरे पिताजी और मेरे को रोके नहीं, बोला ठीक है तुम लाइब्रेरी जाती है तो फिर इधर भी प्रभुपाद जितना दिन रहेगा तुम जाना। तो हम बोले चलो। फिर हम प्रभुपाद के पास आते, प्रभुपाद हमको बोलते तुमको क्या सर्विस अच्छा लगता है, हम बोला ये आपके जो राधा गोविंद जी का मूर्ति है ना इसको हमको ड्रेस करने के लिए परमिशन दीजिए। बोले कि अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा देर आओ जाओ, नियम पालन करो चाटो, फिर दूसरा बोलो, फिर बोले दूसरा बोलो। हम बोले कि खाना बनाने का मेरे को बहुत शौक है। तो फिर बोला ठीक है ये तो हो सकता है, मालती को बुलाए। फिर है ना मालती माता जी थी श्याम सुंदर की वाइफ, वो इधर में मतलब कलकत्ता में प्रभुपाद के लिए खाना बनाती थी, और वृंदावन में जमुना माता जी, वो 1970 का बात है। तो छोटी थी ना तो सब मेरे गॉड ब्रदर लोग कुछ, और सिस्टर्स गॉड सिस्टर लोग बहुत मेरे को सहायता देती थी, कभी नहीं रोकती थी कोई बात पर, और इंडियन थी मैं, और एक लड़की भी मैं साथ में ले जाती थी, वो भी बंगाली थी, बहुत अच्छी घराने की लड़की थी वो, सत्यजीत राय का नाम आप लोग सुने होंगे, उसकी बहन, तो मतलब उसकी कजिन बहन, वो भी मेरे साथ जाती थी, प्रभुपाद उसको भी दीक्षा दिए थे, शुमाना हमारा, हम लोग दोनों रोज जाते मंदिर, और घर पर आते तो माँ खुश हो जाती, बोलती कि चलो ठीक जगह पर तुमने जाती हो तो मेरे कोई इतराज नहीं है। तो एनीवे फिर पिशिमा प्रभुपाद की बहन थी जो बहुत मोटी थी, उसको तकलीफ था चलने फिरने में, तो प्रभुपाद ने बोला तुम दोनों थोड़ा देखना, वो आती थी प्रभुपाद के पास खाना प्रसाद बना के लेके आती थी, कभी कभी मंदिर में बैठ के भी प्रसाद बनाती थी, तो हम लोग देखते थे कैसे पिशिमा बनाती है। तो साल 100 साल के बाद प्रभुपाद का जब सेंटिनियल का प्रोग्राम हुआ था, वो सारी पिशिमा का रेसिपी मैंने छोटी सी एक बुक में प्रभुपाद स्पेशल बोल के उसमें हम डाल दिए, और वो अभी बहुत बिकते हैं मंदिर में, मायापुर में, सभी जगह, सारा भारत में शायद। एनीवे वो एक दिन प्रभुपाद आए अमेरिका से, उस दिन मेरी बुखार थी, तो प्रभुपाद ने हम नहीं जा पाए, तो मालती को शायद बोले थे कि तुम परवल का सूप बनाओ, बंगाली सूप होता है, प्रभुपाद ने बता देते थे कैसे कैसे बनाना, मालती वैसे ही फॉलो करती थी, तो
मालती को माथा में परवल नहीं आया क्या होता है, तो फिर है ना वो तुरंत मेरे घर आ गई, बोला कि चलो प्रभुपाद का क्या परवल बोलते हैं सब्जी बनाना है, हम तो समझ गए। फिर जगू मार्केट से परवल लेके गए, बोला आज तुम ही बना लो, हम बोला चलो तब तो बहुत ही अच्छा बात है, हमको परमिशन दिया खाना बनाने के लिए। ऐसे हम प्रभुपाद के घर साफ करते थे, पोछते थे, बिछौना झाड़ते थे, और उनके कपड़े सब समेट के रखते थे, धोबी से आता था जो जो धोने के लिए होता वो डालते, फ्लावर वास बनाते थे। प्रभुपाद बोला कि सब काम ठीक ठीक करते हो ठीक है, सामान सब ठीक ठीक जगह पे रखना, इधर उधर मत करना। हम तो वैसे ही रख देते। तो फिर एक दिन उस दिन हमको बोला, तो प्रभुपाद से प्यार भी मिलता और इन लोग को तो बहुत प्यार मिला, हमको बहुत डांट भी मिला। वो दो एक ठो आप लोग को बता देते हैं बस। तो उस दिन हमको बोला कि तुम खाना बना, भवानंद महाराज बोला, हम बोले चलो बहुत सौभाग्य है कि हम पूरा डिश बनाएंगे, तो ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ वो करती हूँ, करते करके करते 12:30 बज गया, तो पूरा प्लेट तैयार करके फिर भवानंद महाराज उसका सर्वेंट को बुलाए, सुत कीर्ति प्रभु आके लेके भी गए। थोड़ी देर बाद भवानंद महाराज, प्रभुपाद वॉन्ट्स टू सी यू, हम सोचे आपकी बात तो बहुत प्रेज मिलेगा कि बहुत अच्छा खाना बनाई। फिर हम देखा कि नाश्ते नाश्ते उनके घर पर गए तो देखा कि प्रभुपाद चुपचाप बैठे खाना टेबल पर पड़ा है। हमको थोड़ा सा आश्चर्य लगा, क्या मालूम गायत्री जब पूरा नहीं किए होंगे तब तक, ऐसे ही सोच रहे थे। खाना कौन बनाया, मैंने बोला मैं, बोला ले जाओ। हम सोचे क्या गलती हो गया, फिर बोला कि ये खाना तुमको बनाना नहीं आता, तुम तो गुरु सेवा क्या करेगा, कृष्ण सेवा भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको कुछ नहीं होगा, हम नहीं खाएंगे। तो फिर मेरा आंसू आ गया, हम सोचे प्रभुपाद दोपहर में नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। फिर उस टाइम में मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिशिएशन हो गया था। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि कुछ सोचे होंगे, फिर जाओ चपाती बना के लाओ। फिर 3-4 टोच गरम गरम चपाती बना के दिए, फिर वो खाए, फिर हम ऊपर में जाके बैठे, उधर लेडीज क्वार्टर थी ऊपर में खाली, और हम सोचते थे कि क्या गलती कर दी, आज पूरा खराब ही हो गया, प्रभुपाद का खाना भी नहीं हुआ। फिर से बुलावा आया, सची माता को बुलाओ। फिर हम तो नीचे आए, फिर सोचे कि और कुछ डांट और बाकी है। फिर है ना हम चुपचाप दरवाजे के पास खड़े, अंदर आओ। अंदर गए, प्रणाम किए, बैठो, बैठ गए। फिर बोला तुमको हम बहुत डांटा, तुमको मन में बहुत दुख हुआ ना, तो मैंने एकदम जोर से रो दिया, क्योंकि इतना प्यार से बोला जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं, एकदम ऐसी फीलिंग्स था उनका। तुम्हारे सामने में पूरा भविष्य पड़ा है, तुम अभी छोटी है, तुम 16 साल की लड़की है, तो तुमको कितना बड़े बड़े जन को सर्व करना पड़ेगा, बोलो तुम ससुराल जाओगी, सासू होंगे, ससुर जी होंगे, ऐसे ही बना के दोगे क्या, उनको तो पूछना पड़ेगा ना कि कैसे पसंद है कैसे नहीं, कैसे कैसे, ऐसे मत करना कभी, हम तुमको अच्छा से प्यार से बोल रहे, अभी तो तुम दुखी नहीं है ना। तो फिर हम चुपचाप, ठीक है अब ठीक से रहें, ऐसे ही। अभी बहुत स्टोरीज है, हम क्या बताएं, आप लोग को टाइम लेता है हमको, माफ कर दीजिए, कभी और बता देंगे। और एक तो बताते हैं जो प्रभुपाद ने मेरे को बोले थे कि वृंदावन वाला स्टोरी तो बहुत बार बोला, मायापुर में हमारा नाम के बारे में, सची माता के लिए जगन्नाथ मिश्र चाहिए, ये सब तो बहुत मजेदार स्टोरी है। वो नहीं, हम एक तो शिक्षा मूलक बता रहे हैं जो प्रभुपाद हमको, मेरे पिताजी आए और प्रभुपाद बोला, मेरा पिताजी बोला प्रभुपाद जी मेरे बेटी को तो अभी शादी करने का टाइम होने वाला है, तो 18-19 साल हो गया, तो आप तो उनको दीक्षा दिए, तो ये बाहर का लड़का तो ये शादी नहीं करने मांगती, और फॉरेनर से भी इसका शादी नहीं करना, हम लोग का इच्छा नहीं है कि कोई फॉरेन लड़का से इसका शादी करवाए। तो बोले ठीक है तो आप जाइए, हम आपके बेटी से बात कर लेंगे। फिर प्रभुपाद ने मेरे को रात को 8:30 बजे मैं घर ही आ जाते लास्ट शयन आरती के बाद। फिर पहले, उससे पहले प्रभुपाद का मुड़ी दूध ये सब खाना होता, तो कभी कभी हम लोग भी लेके जाते। तो उस दिन मेरे बुलाया कि सुनो तुमसे बात करना है, बैठो। पाप तुम्हारे पिताजी आए थे तो ऐसे ऐसे बोला, तुम एक काम करना, तुम्हारा पिताजी जो लड़का देता है देख के उसी को शादी करो, हम तुमको परमिशन देते हैं, और तुम रोज उसके लिए और उसके घर के लिए खाना बना के फिर नहा लोगे, नहा के फिर तुम्हारा गायत्री अर्चन करके फिर तुम अपना प्रसाद खाना भगवान को निवेदन करके। ऐसे हम अपने बेटी को भी ऐसे ही शादी दिया, और तुम भी ऐसे ही करना, शादी फॉरेनर से मत करना, हम मना करता है। फिर प्रभुपाद चले गए 1977 में, और उसके बाद 87 में मेरे पिताजी चले गए। फिर उसके बाद में टेंपल प्रेसिडेंट हमारे थे उधर आद्री दारण प्रभु, और इनके पिताजी दोनों मिलके फिर हमारा घर में रिश्ता लेके गया, और प्रभुपाद की परिवार में ही शादी हो गया। थैंक यू, हरि बोल।